और इसी को जीव संवारने में पड़ा रहता है, बल्कि मैं समझ लेता है जो दुख देने के लिए शरीर दिया गया उसी को वह सुख का मूल साधन समझ लेता है, अपने को भुला रहता है। और एक प्रकार का क्लेश नहीं, विविधक क्लेश। इस संसार में यदि गिना जाए तो लाखों लाख प्रकार के रोग हैं। रोगों की यह जन्मभूमि है शरीर और मन, अनेक प्रकार के रोग इसमें उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्यों को जो रोग हो रहे हैं या पशु पक्षियों को, वो दीवार में नहीं होता है रोग, पत्थर में नहीं होने, देह में ये सब रोग होता है। फोड़ा, फुंसी, कैंसर, निमोनिया, ये जो भी है सब इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। गिन ही नहीं सकते, इतने रोग हैं। यहाँ विविध क्लेश कहा, विविध क्लेश प्राप्त कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए यह देह दिया गया है। इसलिए तस्मा स्वस्थेन मनसा विमृश गतिमात्मन द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भम त्यज उपशमम आवेश। इसलिए हे महाराज, आप स्वस्थ मन से आत्मा के स्वरूप पर विचार कीजिए। आत्मनः गतिम विमृश, किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल निश्चिंत मन से विचार करना चाहिए कि आत्मा है क्या और किस तरह आत्मा विविध कर्मों का फल भोगता है, विविध शरीर में जाता है, एक शरीर छोड़ना पड़ता है, दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोग, इन दो को बहुत सहना पड़ता है। तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, इस समय किस तरह से विषयों को भोग रहा है, ये सब समझने का प्रयास कीजिए। तस्मात् स्वस्थेन मन से, अव्यग्र मन से, निश्चिंत मन से, एकाग्र मन से विचार कीजिए आत्मा के स्वरूप पर। और आत्मा के अतिरिक्त जो पदार्थ हैं, देह आदि, भोग आदि, इनमें ध्रुवार्थ विश्रम्भम त्यज, त्याग दीजिए। कि यह शरीर ध्रुव है और इस शरीर से भोगे जाने वाला सुख ही वास्तव में जीवन का सुख है, इस विश्रम्भ को, इस धारणा को, विश्वास को त्यज, त्याग दीजिए। ये ठीक नहीं है। मन में जो बात बसी हुई है कि संसार सत्य है, मैं नित्य हूँ और ये भोग मेरे लिए आवश्यक है, इस भावना को, इस विश्रम्भ को, विश्वास को त्याग दीजिए। और उपशमम आविश, आप उपशम में आविष्ट हो जाइए। उपशमम का अर्थ होता है शांति, अर्थात भगवत निष्ठा, भगवान में मन लगाइए, भगवान के रूप गुण लीला आदि में मन को लगाइए, शांत कीजिए, संसार की आस्था त्याग दीजिए। इस तरह से श्री नारद जी और अंग्रेज जी ने उपदेश किया। ये अंग्रेज जी बोल रहे थे, सॉरी, अंग्रेज जी उपदेश कर रहे, ऐसे दोनों भाई बोल रहे थे। तब इसके बाद नारद जी ने स्पेशल कहा, नारद उवाच, एता मंत्रोपनिषदम प्रतीक्षा प्रयतो मम यान धारयन सप्तरात्र दृष्टा समकर्षण प्रभु। यह एक मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। नारद जी ने देखा कि अंगिरा जी के द्वारा जो कुछ भी उपदेश हुआ उसमें राजा का मन पूरा पूरा प्रवेश नहीं कर रहा था, उसे चिंतित थे। तब नारद जी ने यह कहा कि बिना भगवत कृपा के, बिना भगवत प्रसाद के मन तत्व को नहीं पकड़ पाता है, अतः भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के गुणों का कीर्तन कीजिए। यह उपनिषद में मंत्र दिया हुआ है, इस मंत्र को मैं आपको दे रहा हूँ। मंत्र जैसे महामंत्र है, ऐसे उपनिषदों में बहुत मंत्र है। सबसे पहले व्यक्ति को भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, तब वो किसी सत्य बात को समझ पाएगा, नहीं तो समझना कठिन है। जैसे कभी कभी भक्त लोग कहा करते हैं कि संसार में बहुत सी कथाएं होती हैं और सुनने के लिए संख्या भी बहुत अधिक जुटती है, पर यह नियम है कि जहां भगवान के नाम का कीर्तन खूब किया जाएगा तो वहीं पर तत्वज्ञान ठहर सकता है। श्री नारद जी कह रहे हैं कि आपका मन तब भगवान में लगेगा जब इस मंत्र की आप आवृत्ति करेंगे। और उन्होंने बहुत थोड़ा समय बताया, याम धारयन सप्त रात्रान, यदि इसे अखंड आप 7 दिन 7 रात जपेंगे तो आपको साक्षात भगवान शंकरषण का दर्शन मिलेगा। इतने कम समय में दृष्टा शंकरषण प्रभु। इस श्लोक में भगवान नाम की महिमा बताई जा रही है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत प्रकार के प्रवचन को नहीं समझ सकता है, गूढ़ विषयों को नहीं जान पा सकता है, परंतु भगवान का नाम तो कोई भी व्यक्ति गा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रामायण में लिखा गया है कि जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जा नहीं तेऊ। जो भगवान के गूढ़ स्वरूप को लीलाओं को जानना चाहते हैं, वे लोग भी भगवान का नाम जीभ से जप करके जानते हैं। यही उपाय है, जो जानना चाहे गूढ़ गति जेव, नाम जीभ जप जा नहीं थे। जो जीभ से जपते हैं तब जान पाते हैं। ऐसे मन में भी भगवान का नाम जपा जा सकता है, यह अभी एक विधि है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विधि है जिह्वा से उच्चारण करना। इससे यह लाभ होता है कि सुनने वाले प्राणियों का पाप नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो पुण्य के भागी होते हैं, भगवान में उनका मन लगने लगता है। तो जो लोग जिह्वा से भगवान नाम उच्चारण करते हैं, वे तो अपना जीवन सफल करते ही हैं, अन्य जीवों का भी बहुत बड़ा उपकार करते हैं। अतः उच्चारणम प्रशस्तम, जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि महामंत्र का उच्चारण ही प्रशस्त, इसे सदा बोलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन्होंने कहा कि यह मंत्र जपने से आप शंकरषण देव का दर्शन पाएंगे, भगवान का दर्शन पाएंगे। तो भगवान शंकरषण का थोड़ा परिचय दे रहे हैं अगले श्लोक में, वे कौन हैं। यत पाद मूलम उपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे सर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महत्त्वं पात्रापूर्भवानपि परं न चिरादुपैति। सर्वादय भगवान शिव जिनमें प्रधान है, ऐसे समस्त बड़े बड़े देवता और ऋषिजन जिनके चरण कमलों की उपासना करके इस द्वैत भ्रम को त्याग दिए, माया को पार कर गए और भगवान के ऐश्वर्य को धाम को प्राप्त किए, वैसे आप भी यदि इस मंत्र का जप करेंगे तो भगवान का धाम आपको प्राप्त होगा, भगवान का ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। भगवान का ऐश्वर्य अतुल अनधिकम है, न तो भगवान के समान किसी के पास धन है और न तो बढ़ करके तो होने की कोई बात ही नहीं। अतुल और अनधिकम, अतुल का अर्थ है अतुल्य, समान भी नहीं, भगवान के समान भी कोई नहीं है। किसी भी विषय में भगवान विष्णु अद्वितीय है, किसी भी विषय में, सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य दया कीर्ति, किसी भी विषय में भगवान है अद्भुत हैं, उनके समान कोई नहीं है, फिर बढ़ करके कोई कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान शंकरषण देव का परिचय दे करके अब नारद जी ने यह सोचा कि चित्रकेतु के पुत्र को जीवित कर दूं और पुत्र के मुख से कुछ उपदेश कराऊं। क्या उपदेश? कि पिता और पुत्र का जो संबंध है, यह है नहीं वास्तव में, यह मनोभ्रम है। इस बात की शिक्षा देने के लिए उन्होंने योग शक्ति से चित्रकेतु महाराज के पुत्र को जीवित कर दिया। तो वे कहते हैं श्री सुखवाच, अथ देव ऋषि राजन संपरे तन्द्रपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्। देवर्षि नारद संपरेतम नृपात्मजम, मरे हुए राजपुत्र को दर्शयित्व दिखाया था, जीत कर दिए। उस समय उस बच्चे के जितने भी संबंधी थे वहां सब रो रहे थे, राजा के संबंधी सब रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उनके बीच उस शोक में डूबे हुए थे, विलाप नहीं कर रहे थे, उस समय सब लोग नारद जी की बात सुन रहे थे लेकिन शोक में डूबे हुए। तो उन लोगों के सुनते सुनते देखते देखते श्री नारद जी ने उस बच्चे को जीवित कर दिया। वैसे वो पड़ा हुआ था मर करके, तो उठकर बैठ गया। ये अद्भुत अलौकिक शक्ति है नारद जी की। अथवा कुछ महानुभावों का करना कहना है कि नहीं सोए सोए प्रवचन चालू किया, जो भी हो डर से तो उन्होंने दिखाया मरे हुए को जीवित करके। हमारे वैदिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है, अनेक ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने मृतक को भी जिलाया है, एक नहीं कई मृतकों को बात की बात में जीवित कर दिया। आज के युग में तो जीवित करने की बात छोड़ दीजिए, कोई किसी को किसी रोग से मुक्त कर दे तो महासिद्ध हो गया। तो भी अपने कर्मानुसार किसी को ठीक होना है तो होता है, किसी के द्वारा हो नहीं पाता है वास्तव में। परंतु नारद जी जैसे महापुरुष है तो किसी को जीवित कर सकते हैं। शरीर में रहने की अवधि उसकी पूरी हो गई है लेकिन उसको लौटा करके फिर से जीवित कर दे, कहने लगे। जब ही वो मरा हुआ बच्चा था तो उससे नारद जी ने कहा, नारद उवाच, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। हे जीवात्मन, हे जीवात्मा, ते भद्रम, तुम्हारा हित हो, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, ते तव मातरम पितरम च पश्य, तुम अपने माँ को और अपने पिताश्री को देखो, इनकी क्या दुर्दशा है, कितना दुखी है तुम्हारे बिना। मातरम पितरम च पश्य, मातरम पितरम और चकारेण अन्यम सर्वम, अन्यत सर्वम, और सबको देखो जो तुम्हारे विरह में तुम्हारे मृत्यु से बहुत दुखी है। सुहृदो बांधवास्तप्ता सुचात्वत कृपया भ्रष, तुम्हारे अन्य भी जो सुहृद हैं और तुम्हारे बंधु, ये सब तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए शोक से ग्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं, तो देखो। इतने कहते ही बच्चा उठ करके बैठ गया। देखो, फिर नारद जी कहते हैं, कलेवरम समाविश्य स्वम कलेवरम आविश्य, तुम अपने कलेवर में शरीर में फिर से प्रवेश करो। कर ही चुका था अथवा बैठने से पहले बोल रहे हैं, कलेवरम स्वम आविश्य, अपने कलेवर में अपने शरीर में फिर से प्रवेश करके शेषम आयु भूच्छ, शेषम आयु स्वर्ग, तुम्हारी जो आयु शेष रह गई है उस शेष आयु को इसी शरीर में पूरा करो। अपमृत्यु हुई थी ना, अकाल मृत्यु हुई थी, तो प्राय धारणा है लोक में कि कोई जवानी में या बचपन में मर जाता है बिना बुढ़ापा के, तो उसको अपमृत्यु कहते हैं, खराब मृत्यु है, ऐसे नहीं मरना चाहिए। शरीर बूढ़ा हो जाए इसके बाद निकल जाना चाहिए शरीर से, वो ठीक है, लेकिन जवानी में और बचपन में कोई मनुष्य शरीर में खास करके रह करके विदा हो गया तो मनुष्य शरीर में कोई अच्छा कर्म किया नहीं, भगवान का भजन नहीं किया, दान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तप नहीं किया बेचारा, तो उसका जीवन व्यर्थ माना जाता, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु बहुत खराब माना जाता है, लेकिन वास्तविक बात देखी जाए तो अकाल मृत्यु कोई चीज नहीं है। काल मतलब, काल का मतलब बुढ़ापा थोड़े होता है, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु, काल मृत्यु का मतलब है समय से मरना। जैसे कोई फसल लगाया गया है, पहले फसल दिया, इसके बाद सूखने लगा, गिरने लगा तो काट लेना चाहिए, जैसे चावल का पौधा है, तो उसको माना जाएगा कि सकाल मृत्यु है। लेकिन बचपन में ही न फूल आया न फल आया, कुछ नहीं, काट दिया गया, तो उसको कहा जाएगा अकाल मृत्यु। तो नारद जी कहते हैं कि तुम अपनी शेष आयु को इस शरीर में पूरा करो और पितृ भोगान, पितृ प्रतन भोगान भूल, और इसके बाद अपने पिता के द्वारा दिए हुए भोग को भोगो। तुम तो कोई गरीब के पुत्र हो नहीं, तुम तो एक बहुत बड़े राजा के बेटा हो, तो इस शरीर में रहोगे तो राजकीय भोग मिलेगा भोगने के लिए। और कहीं शरीर को छोड़ करके पशु पक्षी में चले जाओगे या निर्धन मनुष्य के या पुत्र बनोगे तब तो कुछ मिलेगा नहीं तुमको। तो अपने धनी पिता के द्वारा दिए हुए भोगों को भोगो, इसी शरीर में रहो। अभी तिष्ठ निर्पासन, और जब तुम्हारे पिताजी राज छोड़ देंगे, वन में चले जाएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो निर्पासनम अधितिष्ठ, फिर राज की राजगद्दी पर बैठो। क्यों मर कर जा रहे नारद जी ने इस प्रकार कहा है, सब सुख दिखाया कि राजा के पुत्र हो तो राजा के द्वारा पिता के द्वारा दिए हुए भोगों को भोगो, राज्यासन के बाद में बैठो, अपने सुहृदों के साथ शेष आयु इसी शरीर में पूरा करो। इतना सुनते ही बच्चा जीवित हो गया, बैठ गया और जीव उवाच बोला, जीव उवाच। इस पर एक प्रश्न किया गया, जीव उवाच का क्या मतलब है? कहा जाता है कि राजकुमार उवाच, शिशु उवाच, जीव उवाच। इस पर मतभेद है टीकाकारों में। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जीव शब्द से उस बच्चे का ही बोध होता है, बच्चा उस शरीर में जीवित हो गया, अथवा मरे मरे ही वो बोला, जीव बोला प्रेत शरीर में भूत बन करके, कहने का आशय यह। तो जैसे भी हो, या तो वो बैठा उठ करके या सोए सोए बोलने लगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी सारा झंझट मिटाने के लिए जीव कह रहे हैं कि जीव बोला, जीव उवाच, जीव बोला। कस्मिन् जन्मन्यमि मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्म भिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यन्द्रयोनिषु। अमि, ये लोग कस्मिन् जन्मनि मह्यं पितरो मातरो भवन्, किस जन्म में ये मेरे माता पिता बने हैं? तो बच्चा अद्भुत प्रश्न कर रहा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने पिता के द्वारा दिए हुए भोगों को भोगो, और तुमको पुत्र मान करके ये लोग रो रहे हैं, दुलख रहे हैं, ठीक नहीं है, इसी शरीर में आ जाओ। तो बच्चा कहता है, जीव कहता है कि ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? मैं तो बहुत जन्म लिया हूँ, केवल इसी शरीर में तो मैं ना रहा, इस शरीर में तो मैं केवल 2-4 महीना रहा या 1-2 साल रहा, जो भी रहा। अभी तो स्तन पीता था तो कितना साल भर से छोटा ही होगा ना, 5-6 महीने का होगा, जो भी हो। तो इस शरीर में तो मैं बहुत कम दिन रहा, इसके पहले बहुत बहुत शरीर लिया, हमारे बहुत बहुत माता पिता हुए, तो उन शरीरों में ये दोनों कब मेरे माता पिता हुए हैं, ये प्रश्न करता। 6-7 महीने के लिए बस बेटा बेटा करने लगे और कई बार शरीर लिया हूं, ग्रहण किया हूं, उसमें किस शरीर के माता पिता रहे, इनसे पूछिए तो वो दोनों बेचारे रो रहे थे, लेकिन अब तो सुनने लगे, अब तो सारा समाज हक्का बक्का हो गया होगा कि मरा हुआ बेटा जी करके प्रवचन कर रहा है, सब लोग शांत हो गए सुनने लगे। और प्रवचन में सबसे पहले यही प्रश्न करता है, ये विचारने की बात है। कोई व्यक्ति यदि यह अभिमान करता है कि मैं अमुक का बाप हूँ, पिता हूँ, तो ये भी सोचना चाहिए तुम्हें कि किस किस जन्म में इसका पिता रहा है। इस जन्म के अलावा और भी समय में कभी पिता बना था क्या? यह शोध का विषय है, लेकिन पता लगेगा कि नहीं था वास्तव में, या कुछ पता नहीं है। कर्म भीर भ्रम महाराष्ट्र देव त्रिय निर्जोन से, मैं तो अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण कर रहा हूँ, मनुष्य योनि में कभी कभी पशु पक्षी में, कभी देव योनि में, कभी देवता भी बना हूँ, कभी पशु पक्षी में गया हूँ, कभी मनुष्य भी बना हूँ, बहुत बहुत बहुवचन का प्रयोग कर रहा हूँ। देव त्रियंग निर्योनिषु, देव का अर्थ तो समझते ही हैं, और त्रियंग का अर्थ होता है तिरछा खड़ा होने वाले पशु। मैं पशु योनि में भी गया हूँ और मनुष्य योनि, देव योनि, इन सब में मैं बार बार जन्म लिया हूँ, गया हूँ, तो किस जन्म में ये हमारे माता पिता हुए हैं? बंधु ज्ञात मध्यस्थ मित्रोदासीन बुद्धि सह सर्वैव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथा। इस प्राकृत जगत में जीव कह रहा है, इस प्राकृत जगत में अनेक जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष जोनि तो कर रहे हैं भ्रमण, सब भ्रमण कर रहे हैं। तो जीव अपने अपने कर्मानुसार भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, उसी में से कोई बंधु हो जाता है, कोई ज्ञाती, कोई अरि, कोई मध्यस्थ, कोई मित्र, कोई उदासीन, कोई विद्वेष। ये कितने हुए? बंधु, ज्ञाति, अरि, मध्यस्थ, मित्र, उदासीन, विद्वेष, 7 प्रकार का संबंध होता है मनुष्यों से। तो जीव घूम रहा है कर्म से, उसी में कोई किसी का बंधु बन गया, कोई ज्ञाति, कोई शत्रु, कोई मध्यस्थ, कोई मित्र, कोई उदासीन और कोई द्वेष, घूमते रहते हैं और बदलता रहता है। आज जो व्यक्ति बंधु है, कल हो सकता है कि वही अरि हो जाए, शत्रु हो जाए, घूमते रहते हैं। बंधु का अर्थ होता है जो किसी बंधन से संबंधी बनते हैं, जैसे विवाह आदि द्वारा, विवाह के द्वारा कुछ लोग अपने सुहृद हो जाते हैं। विवाह एक बंधन है, बंधन मतलब संबंध, बंध संबंध है, जिसमें सम्यक बंधन लगे उसको संबंध कहते, बंधन लगता है। इस संसार में प्राय ऐसे लोग हैं कि किसी का किसी से पहले से परिचय नहीं है, लेकिन अपने बच्चे का, अपने लड़के का विवाह करते हैं किसी की कन्या के साथ, या अपनी कन्या का विवाह करते हैं किसी के साथ, तो एक संबंध जुड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को बंधु कहते हैं, विवाह आदि के द्वारा जिनके साथ संबंध होता है। और ज्ञाति का अर्थ होता है गोपिया सपिंड, जो जिनके साथ शारीरिक संबंध होता है उनको ज्ञाति कहते हैं, जो सेम पूर्वजों से उत्पन्न हुए हैं उनको ज्ञाति कहते हैं। और अरि का अर्थ होता है घातक, जो स्वाभाविक ही शत्रु होते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और मध्यस्थ का अर्थ होता है न तो वे शत्रु हैं और न तो मित्र हैं। मध्यस्थ का अर्थ होता है कभी कभी शत्रु का भी काम करते हैं और कभी कभी मित्र का भी काम करते हैं, उनको मध्यस्थ कहते हैं। और जो शत्रु मित्र किसी से भी, शत्रु या मित्र होने से उनको कोई मतलब नहीं है, तो उनको उदासीन कहते हैं। उदासीन और मध्यस्थ में अंतर, एक मध्य में है, कभी इधर हो गया कभी इधर हो गया, मध्यस्थ हो गया, ऐसा संभावना रहती है। और उदासीन जो उत आसीन, ये संसार की धारा से ऊपर बैठा हुआ है, उत आसीन ऊपर बैठा है, मतलब कोई नहीं, न देश न कुछ भी, न प्रेम। और मित्र, मित्र का अर्थ होता है रक्षक या हेल्पर, जो हेल्प करता है स्वाभाविक। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो स्वाभाविक प्रेम करते हैं, सहायता करते हैं, हित चाहते हैं, तो उनको मित्र कहते हैं। और विद्विषह का अर्थ विशेष द्वेष करने वाले, वे शत्रु नहीं होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। अरि में और द्वेषी में क्या अंतर है? अरि का अर्थ होता है स्वाभाविक घातक, स्वाभाविक नुकसान करने वाले। और विद्वेषी का अर्थ होता है किसी व्यवहार के चलते, पैसा के चलते, घर के चलते, बंटवारा आदि में द्वेष हो जाता है, वो अपना भाई भी द्वेषी हो जाता है, अपना मित्र भी कभी कभी द्वेषी हो जाता है, कुछ से कोई चीज बांटने में धन आदि के लिए झगड़ा हो जाता है। जैसे कौरव पांडव वास्तव में ज्ञाति थे, एक ही परिवार के थे, लेकिन राज्य के बंटवारा में द्वेष हो गए। दुर्योधन ज्यादा क्या, सब हड़प लिया, वो सुई के नोक भर भी जमीन नहीं देना चाहता था पांडवों को, इस तरह से द्वेष छिड़ गया। तो द्वेष किसी कारण से होता है, और शत्रु जो होता है वो कारण नहीं, स्वाभाविक नुकसान करने वाला। तो इस प्रकार से सारा मनुष्य समाज ऐसे वर्गों में बैठा हुआ है, लेकिन ये सब जो संबंध है, सर्व एव ही सर्वेशम भवन्ति क्रमशो मिथा, सबके साथ और सबका ऐसा संबंध होता रहता है। आज जो मित्र है वह कल बंधु हो सकता है, ज्ञाति हो सकता है, मध्यस्थ हो सकता है, उदासीन देशी सब कुछ हो सकता है। ये बदलता रहता है। हम लोग विश्व के इतिहास में पढ़ते हैं ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आजकल भी देखा जाता है कि एक देश कभी किसी का मित्र रहा तो वही देश घोर शत्रु बन गया, ऐसा देखा है। कुछ ऐसे लोग जो माने जाते थे कि वे हमारे बहुत सहायक हैं, बहुत सहायक हैं किसी किसी के, और बाद में पता चलता है उस राष्ट्र को कि अरे वो तो बहुत बदमाश है, उसको मारो उसको मारो, ये करो 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 ऐसे करो, इस तरह से देशी हो जाते। जो हमारे काम में आ रहा था तब तो बहुत अच्छा व्यक्ति, जो हमारे विरुद्ध हो गया तो इसको मारो 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 ऐसा करो। ये संसार में सब जगह ये बात है। कोई बंधु ज्ञाति हो सकता है, ज्ञाति बंधु हो सकता है, या आरी हो सकता है, मध्यस्थ हो सकता है, सब बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आज जो हमारा खास व्यक्ति हो सकता है हमारे शत्रु के घर में जन्म ले, शत्रु के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो सकता है कि हमारा संबंधी हो जाए, ये तो होते ही रहते हैं। इसलिए जीवात्मा कह रहे सर्व एव ही सर्वे सम भवंती क्रमशोमिता, सभी लोग सभी के सब कुछ हो जाते हैं क्रमशः कर्मानुसार समय समय पर। तो जब होना ही है, इसके कहने का अर्थ यह है कि इस जन्म में मैं आपका पुत्र हूं, हो सकता है पिछले जन्म में चाहे अगले जन्म में मैं ही आपका बाप बनूं, ये कोई ठीक नहीं है। उसके कहने का आशय यही है। तो इसके लिए क्या रोना धोना है, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, ये संबंध की अनित्यता है। वास्तव कोई ठीक नहीं है, कब क्या संबंध रहेगा संसार में, कब कहाँ जन्म होगा, किस परिवार में जन्म होगा, उस परिवार में जन्म लेने के बाद हमारे साथ क्या संबंध उसका होगा, या वो अभी दोनों व्यक्ति शरीर छोड़कर के चले गए कोई दूसरे परिवार तीसरे पशु पक्षी आदि में, कोई न तो शरीर नियत है और न तो संबंध नियत है, नियत का तो एक रूपता, कोई ठीक नहीं, संबंध बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, सब कुछ। ये शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा की गति पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत माता पिता मिले हैं जीव को, कोटि कोटि माता पिता, कोटि कोटि भाई बंधु परिवार सब कुछ, लेकिन आज उनका कोई पता नहीं है। जीव अकेले जन्म लेता है, ऐसा नहीं है कि पहले जितने परिवार के लोग थे वो सब लोग एक ही साथ मर करके एक साथ एक परिवार में जन्म ले, नहीं, अकेले बच्चा जन्म लेता है, कभी कभी ट्वीन जन्म लेते हैं, लेकिन उनके ही कर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, अकेले जन्म होता है और अकेले जाना भी होता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस परिवार का पालन किया हूं अब मैं मरने जा रहा हूं इसलिए सब मेरे साथ मरो चलो, कोई अब नहीं जिएगा, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता, और कहेगा भी तो कौन मानने वाला है। ठीक है, तुम्हारी मृत्यु आई है तुम मरो, हम क्यों मरेंगे, अभी हमको ये सुख भोगना है, यह करना है वह करना है, कोई साथ में मरने के लिए तैयार नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ अपना ब्लड दे सकता है इतना ही करेगा, लेकिन मरने के लिए कौन तैयार है साथ, जरूरत पड़ेगी। कभी कभी लोग वो भी नहीं देते हैं, कहते हैं कि हमारा ब्लड और उनके ब्लड में अंतर है, डॉक्टर मना कर रहा है इसलिए हम नहीं देंगे, इतना तक हो गया। अरे ब्लड देने की तो बात दूर रहे, कुछ लोग अपने माता पिता को पानी तक नहीं देते है ना, देखते हैं उसी बच्चे को माता पिता कितना प्यार से पाले पोसे सब कुछ किए ले। हमने देखा है कभी कभी हैंड पाइप पर चंपा कल पर बाप नहा रहा है और दो चार बच्चे उसके पुत्र वही गप कर रहे हैं, लेकिन हैंड पाइप नहीं चलाते हैं कि नहा लीजिए, और कुछ दिन के बाद जब पिताजी बहुत वृद्ध हो जाते हैं तो वे लोग मन ही मन भगवान से मनाने लगते हैं कि अब तो इनको ले जाते तो अच्छा होता, इनको बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे ये कहो कि तुम्हारा घर गंदा हो रहा है, लेकिन ऐसे सुंदर शब्दों में कहते हैं हमारे पिताजी को बड़ा कष्ट हो रहा है, इसे तो अच्छा होता कि राम जी सुन लेते इसको इनको पार कर देते। संबंध और भाव दोनों अनित्य हैं वास्तव में। तो जीवात्मा ये कह रहा है कि सभी सबके सभी बनते हैं, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माँ है, क्या है। जथा वस्तुनि परिणामी हेमा देवी ततस्तत पर्यटन्ति नरेश एवं जीव जोनिषु कर्तृषु। अब उदाहरण दे करके समझा रहा है कि कर्म के अनुसार जीव कैसे विविध जोनियों में भ्रमण करता रहता है। एक दृष्टांत द्वारा समझा रहा है, जैसे पर्ण्यादिनी हेमा दिनी, पर्ण्यानी हेमा दिनी, जिस वस्तु से कोई चीज क्रय किया जाए, खरीदा जाए, उसको पर्ण्य कहते हैं। तो पूर्व जमाने में हमारे देश में और भी जगह सोने के सिक्के चलते, इसको पर्ण्य कहते हैं। आपण शब्द का अर्थ आपने सुना होगा, बाजार होता है। पर्ण्य का अर्थ है क्रय करने की क्षमता जिसमें है। या आज के युग में जो क्वाइंस हैं, नोट है, तो नोट तो गल जाता है, इसीलिए यह उदाहरण देना ठीक नहीं आत्मा के साथ। लेकिन सोने का मुहर है तो क्वाइंस है तो एक बक्सा से दूसरे बक्से में, एक दुकान से तीसरे में, चौथे में, इस तरह पैसा घूमता रहता है। हेमा दिन इतस्तत स्वर्ण या चांदी आदि ये सब वस्तुएं इतस्तत पर्यटन्ति, ये घूमते रहते हैं। आज कोई पैसा किसी के पास आ गया अपने पास तो कहता है मेरा पैसा है, मेरा पैसा है। और वही कोई चीज खरीद लेता है तो जिसके दुकान में वो पैसा जाता है तो कहता है मेरा है, मेरा है, मेरा है। और फिर वो जा करके किस दूसरे जगह खरीद लेगा कोई चीज तो वो कहेगा मेरा है, मेरा है, मेरा है। एक पैसा कितना दिन भर में घूमता होगा ये घूमता ही रहता है चारों तरफ। यह संबंध जो है नित्य, आत्मा इस तरह से विविध शरीरों में घूमता रहता है। जिस परिवार में गया, देह में गया, तो कुछ लोग कहना चालू करते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, बाजा बजाओ, ढोलक सजाओ, बर्थडे मनाओ, कहता है ना ये करो, ये करो, ये करो। तब तक मर कर दूसरे देह में गया तो वहां वाले फिर ढोलक बजाना चालू, और वहां से मर कर दूसरे जगह गया तो फिर इस तरह। लेकिन जैसे सोना चांदी के सिक्के, कोई भी क्वाइन से नोट घूमते रहते हैं, घूमते रहते, उस तरह से जीव तो घूम रहा है कर्मानुसार। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बहुत प्रसन्न है इस प्रसंग से कि आत्मा की उपमा सोना से दी गई। कई घूमता रहता है, घूमता रहता है पैसा, सोने का या चांदी का भी। घूमने के लिए ही बनाया गया है। कुछ लोग पहले जमीन में गाड़ कर बहुत देर तक रखते थे तो लंबी आयु मान लीजिए, बहुत काल तक फिर जन्म नहीं हुआ। लेकिन बाद में कोई न कोई सरकार उखाड़ करके ले गया, क्या हुआ ऐसे। एक बार हमने सुना था कि मान सिंह ने जो रत्न इकट्ठा किया था अकबर के समय में, अकबर ने कहा था कि आप जीतिए राजाओं को, शासन मैं करूंगा। तो मान सिंह ने कहा कि दिग्विजय में जो पैसा मिलेगा वो मैं रखूंगा। तो अकबर ने कहा ठीक है आप रखिएगा। तो वो सब जयपुर में गाड़ कर रख दिए थे कोष में, जैसे थे। जैसा हमने सुना था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में वो सब निकाल करके राष्ट्रीय कोष में जमा किया गया। वो तो अचल था, आत्मा की तरह अमर था, बहुत देर तक वहां रह गया, लेकिन इसके बाद गया राष्ट्र कोष में। तो इस तरह से जीव विविध है, परिवार में, विविध शरीर में, विविध देश में, विविध काल में घूमता रहता है, घूमता रहता है इतस्तत यहां वहां। और यह भी देखा जाता है कि जिसके पास वो पैसा गया वही कहता है मेरा है, मेरा है, मेरा है। और कोई चीज खरीद लेता है, उसको दे देता है, तो उसके बाद ममता हट जाती है। अब दो श्लोकों में ये बता रहा है जीवात्मा कि ये तो मरने के बाद संबंध बिछुड़ता है, लेकिन जन्मनी अस्मिन जन्मनी अपि इसी शरीर में रहते हुए भी संबंध बदल जाता है, और संबंध के बदलते ही ममत्व तो भी नष्ट हो जाता है इसी शरीर में रहते ही। तब वो कहता है नित्यस्य अर्थस्य संबंधो या नित्य दृश्यते नृषु जावत जस ही संबंधो ममत्वम तावदेव। अर्थ नित्य रहता है लेकिन उसके साथ जो संबंध है जीव का वो अनित्य रहता है। अर्थ से तात्पर्य है भूमि या पैसा, पैसा को अर्थ कहते भी हैं। मान लीजिए सोना है, चांदी है, हीरा है, तो वह तो नित्य रहता है कुछ खास काल के लिए, लेकिन उसके साथ संबंध है जो मनुष्यों का देखा जाता है वो बदलता रहता है। आज वह सोना किसी के पास है तो कल किसी का हो जाएगा, परसों किसी का हो जाएगा। कुछ लोग सोने के विषय में प्रतीक्षा करते हैं कब महंगा हो रहा है, तो वे ममता नहीं रखते हैं, सोने को बेच देते हैं यदि महंगा हो तो, उसके बदले दूसरी वस्तु ले लेते हैं, घर खरीद लें या कार खरीद लें, जो कुछ भी हो वो ले लेते हैं। तो सोने की ममता हट जाती है, उसके साथ संबंध हट जाता है। और सोना यदि जाए चला जाए किसी के पास और उसकी चोरी हो जाए तो जो बेच दिया है उसको कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन जब तक संबंध रहता है अपने पास रहता है और उस समय अगर चोरी चला जाए तो बहुत चला जाए। तो संबंध अनित्य है और जब तक संबंध है तभी तक ममता है। तो जब संबंध ही नित्य नहीं है तो ममता बेकार है। संबंध बदलते हुए देखा जाता है, कोई वस्तु बेच दी जाती है जैसे पशु आदि। मनुष्य अपने घर में पशु रखता है, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अपने बैल को अपने गाय को भैंस को मान लीजिए बेच दिया, तो बेच दिया तो उसके साथ ही संबंध हटा, संबंध विच्छेद हुआ बस पशु के साथ, उस पशु के रूप में पैसे से संबंध जुड़ गया और पशु से संबंध हटा। संबंध हटते ही ममता भी समाप्त, उसी दिन ममता खत्म हो जाती है। एक ही गांव में, मैं अपने गांव की बात कहता हूँ, एक बार मैं देखा एक बैल बेचा एक व्यक्ति ने, बैल बेचा और गांव की ही बात थी, गांव का एक आदमी दूसरे परिवार को बैल बेच दिया। तो बैल का बेचारे का स्वभाव था, इस घर में रहा था इसीलिए हल से खुलने के बाद खेत से आने के बाद उस घर में आ गया जिस घर में वो पहले था। तो मैंने अपने कान से इस बात को सुना और आंख से देखा। एक स्त्री कहती है इकाना के बैल हरे वो अरे किसका बैल है, मारो मारो मारो। वो बैल उसी घर में कई साल से रहा है, कई साल से उसी में भूसा खाया है, रहा है, वास किया है, लेकिन जब बेच दिया गया, कल बेचा गया था, आज वो आ गया खाने लगा तो कहते किसका बैल है, अरे मारो मारो मारो। तो संबंध इस तरह से अनिश्चित है, और संबंध अनिश्चित है, संबंध जो ही टूटता है तभी ममता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए संबंध और ममत्व दोनों अनियत हैं, अनस्थिर हैं वास्तव में। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए को इस प्रकार के क्षणिक संबंधों में दुख और सुख का अनुभव न करे। तो कोई किस वस्तु को बेच दिया, मान लीजिए कोई अपने घर से किसी पशु को बेच दिया है, तो पशु खा रहा है ठीक से या नहीं खा रहा है उसको क्या चिंता है, या वो पशु एक दिन के बाद मर भी जाए तो जो पशु बेच दिया है उसको कोई दुख नहीं होगा, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके पास जो पैसा आया है उस पशु के बदले, और पैसा यदि कहीं चोरी चला जाए या जल जाए तो बहुत दुख, और उसके पहले यदि बैल को कोई बुखार आवे दुख आवे या मर जाए तो उसमें दुख, लेकिन बेच दिया तो पैसे में ममता आ जाती है, पैसे से कोई चीज खरीद लिया तो उसमें ममता आ जाती है, क्योंकि संबंध बदल जाता है, संबंध दूसरा हो जाता है, उस वस्तु को फिर विनिमय करके तीसरी वस्तु लाया तो उसमें ममता हो जाती है। तो ममता का जो कारण है संबंध वह अनित्य है, और इस कारण से ममता भी अनित्य है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा है बच्चा, शिक्षा दे रहा है। नित्य अर्थ से संबंध हो या नित्य दृश्यते, यदि वह अर्थ पशु या पैसा रहते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन रहते हुए भी इनमें संबंध अनित्य देखा जाता है। और जावत जैसा ही संबंध हो ममत्वम तावदेव ही, और जब तक किसी का किसी वस्तु से संबंध रहता है ममत्वम तावत एव, ममता भी उतने ही समय तक रहती। संबंध नहीं रहा तो ममता भी नहीं रहती। और मनुष्य समाज में एक प्रकट देखी जाती है बात। मान लीजिए चार भाई हैं, पांच भाई हैं, तो छोटे छोटे हैं, एक में खाते हैं पीते हैं, विवाह भी करते हैं कुछ काल के लिए, लेकिन जब बंटवारा हो जाता है, थोड़ा संबंध शिथिल होता है, तो वो भाई कैसे खा रहा है, कितना दुख में है, दूसरे भाई को कोई मतलब नहीं। और जब संबंध था, एक में थे, तो एक दूसरे के योग छिम की चिंता करते थे, लेकिन अब उसके बाद नहीं करते। तो जब इसी शरीर में रहते हुए किसी वस्तु के साथ संबंध देखा जाता है छूट रहा है, और उसके अनुसार ममता छूट रही है, तो शरीर बदल करके कोई आत्मा चला गया तो उसके लिए क्या अब रो रहे हैं आप लोग। और जब इस तरह से शत्रु भी मित्र के रूप में हो सकता है, पुत्र के रूप में हो सकता है, तो कदाचित ये हो सकता है कि मैं पूर्व जन्म में आपका दुश्मन रहा था, और दुश्मन को ही पुत्र मान करके आप लोग खुश थे। तो यदि वास्तव में मैं दुश्मन था तो मर गया तो और खुश होना चाहिए ना, क्योंकि संबंध तो अनित्य है ही, कोई ठीक नहीं। अन्यथा आप बताइए कि किस जन्म में आप माता पिता थे हमारे, ये बताना पड़ेगा। यही मूल बात क्या, किस जन्म में आप लोग माता पिता बने थे। मैं तो ये समझ रहा हूं कि मैं आपका शत्रु हूं, जब तक नहीं आया था तब भी दुख दे रहा था, मर करके गया तब भी दुख दे रहा। दुख देना शत्रु का काम है, और आप लोग इतने मूर्ख हैं कि शत्रु के लिए रो रहे हैं, क्यों ऐसा करते है? बहुत सुंदर वाक्य है कि जावत जस ही संबंध है ममत्वम तावदेव, जिसका जब तक संबंध है तभी तक ममता है। इस संसार में तो सर्वत्र देखा जाता है, देखा जाता है। आज के युग में तो ये सबको मालूम है, उदाहरण आ जाता है। सबसे ज्यादा टाइट संबंध है, सबसे घनिष्ठ संबंध जो है वो स्त्री पुरुष का इस संसार में है। लेकिन जब तलाक हो जाता है, तलाक विदेशी शब्द है, ये भारतीय समाज में नहीं था, लेकिन उसके बाद अब कोई चिंता नहीं, कोई ममता नहीं, कोई संबंध नहीं रहा। इस तरह से सिद्ध होता है कि संसार में कोई किसी का है नहीं वास्तव में, ये झूठा झमेला है, मन में केवल मान लिया गया है, और इसके कारण आदमी दुखी हो रहा है। उस बच्चे के कहने का यह भाव है। ये तो रोज रोज वस्तुएं, खास करके दुकान में कोई जाए तो देखे, जिस वस्तु को दुकानदार कितना सजा करके रखा है, पैकिंग करके ये करके, और उसको बेच दिया, पैसा आ गया, तो पैसे में ममता आ जाती है, और वह वस्तु किसी के द्वारा चाहे नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ममता नहीं, खत्म हो गई ममता। कोई किसी भी वस्तु चाहे व्यक्ति के विषय में यही सत्य है। अच्छा, इसके बाद नारद जी ने कहा था कि तुम अपने पिता के द्वारा दिए हुए भोग को भोगो। इसका उत्तर देते हुए वो कहता है, एवं यो निगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः, यावद् यत्रोपलभ्यत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत्। वो जीव कहता है कि आप लोग हमको बार बार पुत्र क्यों कह रहे हैं। एवं योनि गतो जीव, जो जीव पिता आदि के साथ संबंधित होता है, पिता के वीर्य से उसका शरीर बनता है, इसको कहते हैं योनि गत, पिता आदि के साथ संबंध होता है देह का, लेकिन वह तो नित्य है। यह देह बनने के पहले भी वह था, और देह नष्ट होने के बाद भी वह रहता है।